संख्या 111 अध्याय 20 कहानी कला 2। एक आलोचक ने लिखा है कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी वह असत्य है और कथा साहित्य में सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी वह सत्य है। इस कथन का आशय इसके सिवा और क्या हो सकता है कि इतिहास आदि से अंत तक हत्या, संग्राम और धोखे का ही प्रदर्शन है, जो असुंदर है इसीलिए असत्य है। लोभ की क्रूर से क्रूर, अहंकार की नीच से नीच, ईर्ष्या की अधम से अधम घटनाएं आपको वहां मिलेंगी और आप सोचने लगेंगे, मनुष्य इतना अमानुषी है। थोड़े से स्वार्थ के लिए भाई भाई की हत्या कर डालता है, बेटा बाप की हत्या कर डालता है और राजा असंख्य प्रजा की हत्या कर डालता है। उसे पढ़कर मन में ग्लानी होती है, आनंद नहीं, और जो वस्तु आनंद नहीं प्रदान कर सकती वह सुंदर नहीं हो सकती है, और जो सुंदर नहीं हो सकती वह सत्य भी नहीं हो सकती है। जहाँ आनंद है वहीं सत्य है। साहित्य काल्पनिक वस्तु है पर उसका प्रधान गुण है आनंद करना, और इसीलिए वह सत्य है। मनुष्य ने जगत में जो कुछ सत्य और सुंदर पाया है और पा रहा है उसी को साहित्य कहते हैं, और कहानी भी साहित्य का एक भाग है। मनुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहेली है। वह खुद अपनी समझ में नहीं आता, किसी न किसी रूप में वह अपनी ही आलोचना किया करता है, अपने ही मनोरहस्य खोला करता है। मानव संस्कृति का विकास ही इसीलिए हुआ है कि मनुष्य अपने को समझे। अध्यात्म और दर्शन की भांति साहित्य भी इसी सत्य की खोज में लगा हुआ है। अंतर इतना ही है कि वह इस उद्योग में रस का मिश्रण करके उसे आनंद प्रद बना देता है। इसीलिए अध्यात्म और दर्शन केवल ज्ञानियों के लिए है, साहित्य मनुष्य मात्र के लिए। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, कहानी या आख्यायिका साहित्य का एक प्रधान अंग है, आज से नहीं आदि काल से ही। हाँ, आजकल की आख्यायिका और प्राचीन काल की आख्यायिका में समय की गति और रुचि के परिवर्तन से बहुत कुछ अंतर हो गया है। प्राचीन आख्यायिका कौतूहल प्रधान होती थी या अध्यात्म विषयक। उपनिषद और महाभारत में आध्यात्मिक रहस्यों को समझाने के लिए आख्यायिकाओं का आश्रय लिया गया है। बौद्ध जातक भी आख्यायिका के सिवा और क्या है। बाइबिल में भी दृष्टांतों और आख्यायिकाओं के द्वारा ही धर्म के तत्व को समझाए गए हैं। सत्य इस रूप में आकार साकार हो जाता है और तभी जनता उसे समझती है और उसका व्यवहार करती है। पृष्ठ संख्या 112। वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है। उसमें कल्पना की मात्रा कम, अनुभूतियों की मात्रा अधिक होती है। इतना ही नहीं बल्कि अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। मगर यह समझना भूल होगी कि कहानी जीवन का यथार्थ चित्र है। यथार्थ जीवन का चित्र तो मनुष्य स्वयं हो सकता है, मगर कहानी के पात्रों के सुख दुख से हम जितना प्रभावित होते हैं उतना यथार्थ जीवन से नहीं होते। जब तक वह निजत्व की परिधि में न आ जाए, कहानियों में पात्रों से हमें एक ही दो मिनट के परिचय में निजत्व हो जाता है और हम उसके साथ हंसने और रोने लगते हैं। उनका हर्ष और विषाद हमारा हर्ष और विषाद हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि कहानी पढ़कर वे लोग भी रोते या हंसते देखे जाते हैं, जिन पर साधारणतः सुख दुख का कोई असर नहीं पड़ता, जिनकी आंखें श्मशान में या कब्रिस्तान में भी सजल नहीं होती, वे लोग भी उपन्यास के मर्म स्पर्शी स्थलों में पहुंचकर रोने लगते हैं। शायद इसका यह कारण भी हो कि स्थूल प्राणी सूक्ष्म मन के उतने समीप नहीं पहुंच सकते जितने की कथा के सूक्ष्म चरित्र के। कथा के चरित्रों और मन के बीच में जड़ता का वह पर्दा नहीं होता जो एक मनुष्य के हृदय को दूसरे मनुष्य के हृदय से दूर रखता है। और अगर हम यथार्थ को हूबहू खींच कर रख दे तो उसमें कला कहाँ है। कला केवल यथार्थ की नकल का नाम नहीं है। कला दिखती तो यथार्थ है पर यथार्थ होती नहीं। उसकी खूबी यही है कि वह यथार्थ न होते हुए भी यथार्थ मालूम हो। उसका मापदंड भी जीवन के मापदंड से अलग है। जीवन में बहुधा हमारा अंत उस समय हो जाता है जब यह वांछित वांछनीय नहीं होता, जीवन किसी का दाई नहीं है, उसके सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण में कोई क्रम कोई संबंध नहीं ज्ञात होता, कम से कम मनुष्य के लिए वह अज्ञेय है। लेकिन कथा साहित्य मनुष्य का रचा हुआ जगत है और परिमित होने के कारण संपूर्णतः हमारे सामने आ जाता है, और जहाँ वह हमारी मानवीय न्याय बुद्धि या अनुभूति का अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है, हम उसे दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कथा में अगर किसी को सुख प्राप्त होता है तो इसका कारण बताना होगा, दुख भी मिलता है तो इसका कारण बताना होगा। यहाँ कोई चरित्र मर नहीं सकता जब तक कि मानव न्याय बुद्धि उसकी मौत न मांगे। सृष्टा को जनता की अदालत में अपनी हर एक कृति के लिए जवाब देना पड़ेगा। कला का रहस्य भ्रांति है, पर वह भ्रांति जिस पर यथार्थ का आवरण पड़ा हो, हमें यह स्वीकार कर लेने में संकोच न होना चाहिए कि उपन्यासों ही की तरह आख्यायिका की कला भी हमने पश्चिम से ली है। कम से कम इसका आज का विकसित रूप तो पश्चिम का है ही। अनेक कारणों से जीवन की अन्य धाराओं की तरह ही साहित्य में भी हमारी प्रगति रुक गई है, और हमने प्राचीन से जौ भर इधर उधर हटना भी निषिद्ध समझ लिया। पृष्ठ संख्या 113। साहित्य के लिए प्राचीनों ने जो मर्यादाएं बांध दी थी उनका उल्लंघन करना वर्जित था, अतएव काव्य नाटक कथा किसी में भी हम आगे कदम न बढ़ा सके। कोई वस्तु बहुत सुंदर होने पर भी अरुचिकर हो जाती है जब तक उसमें कुछ नवीनता न लाई जाए। एक ही तरह के नाटक एक ही तरह के काव्य पढ़ते पढ़ते आदमी ऊब जाता है और वह कोई नई चीज चाहता है, चाहे वह उतनी सुंदर और उत्कृष्ट न हो। हमारे यहाँ या तो यह इच्छा उठी ही नहीं या हमने उसे इतना कुचला कि वह जड़ीभूत हो गई। पश्चिम प्रगति कर रहा है, उसे नवीनता की भूख थी, मर्यादाओं की बेड़ियों से चिढ़ा। जीवन के हर विभाग में उसकी इस अस्थिरता की असंतोष की बेड़ियों से मुक्त हो जाने की छाप लगी हुई है। साहित्य में भी उसने क्रांति मचा दी। शेक्सपियर के नाटक अनुपम हैं, पर आज उन नाटकों का जनता के जीवन से कोई संबंध नहीं। आज के नाटक का उद्देश्य कुछ और है, आदर्श कुछ और है, विषय कुछ और है, शैली कुछ और है। कथा साहित्य में भी विकास हुआ और उसके विषय में चाहे उतना बड़ा परिवर्तन न हुआ हो, पर शैली तो बिल्कुल ही बदल गई। अलिफ लैला उस वक्त का आदर्श था, उसमें बहुरूपता थी, वैचित्र था, कौतूहल था, रोमांस था, पर उसमें जीवन की समस्याएं न थी, मनोविज्ञान के रहस्य न थे, अनुभूतियों की इतनी प्रचुरता न थी, जीवन अपने सत्य रूप में इतना स्पष्ट न था। उसका रूपांतर हुआ और उपन्यास का उदय हुआ, जो कथा और नाटक के बीच की वस्तु है। पुराने दृष्टांत भी रूपांतरित होकर कहानी बन गए, मगर 100 बरस पहले यूरोप भी इस कला से अनभिज्ञ था। बड़े बड़े उच्च कोटि के दार्शनिक ऐतिहासिक तथा सामाजिक उपन्यास लिखे जाते थे, लेकिन छोटी छोटी कहानियों की ओर किसी का ध्यान न जाता था। हाँ, परियों और भूतों की कहानियाँ लिखी जाती थी, किंतु इसी एक शताब्दी के अंदर या उससे भी कम में समझिए, छोटी कहानियों ने साहित्य के और सभी अंगों पर विजय प्राप्त कर ली है। और यह कहना गलत न होगा कि जैसे किसी जमाने में काव्य ही साहित्यिक अभिव्यक्ति का व्यापक रूप था, वैसे ही आज कहानी है और उसे यह गौरव प्राप्त हुआ है। यूरोप के कितने ही महान कलाकार की प्रतिभा से, जिसमें बालजक, मोपासा, चेखव, टॉलस्टॉय, मैक्सिम गोर्की आदि मुख्य हैं। हिंदी में 25-30 साल पहले तक कहानी का जन्म न हुआ था, परंतु आज तो कोई ऐसी पत्रिका नहीं जिसमें 2-4 कहानियां न हो। यहाँ तक कि कई पत्रिकाओं में केवल कहानियां ही दी जाती हैं। कहानियों के प्राबल्य का मुख्य कारण आजकल का जीवन संग्राम और समयाभाव है। अब वह जमाना नहीं रहा कि हम बोस्ताने ख्याल लेकर बैठ जाएं और सारे दिन उसी के कुंजों में विचरते रहे। अब तो हम जीवन संग्राम में इतने तन्मय हो गए हैं कि हमें मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता। अगर कुछ मनोरंजन स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य न होता और हम विक्षिप्त हुए बिना नित्य 18 घंटे काम कर सकते तो शायद हम मनोरंजन का नाम भी न लेते। पृष्ठ संख्या 114। लेकिन प्रकृति ने हमें विवश कर दिया है। हम चाहते हैं कि थोड़े से थोड़े समय में अधिक मनोरंजन हो जाए, इसीलिए सिनेमा गृहों की संख्या दिन दिन बढ़ती जाती है। जिस उपन्यास के पढ़ने में महीनों लगते थे उसका आनंद हम 2 घंटों में उठा लेते हैं। कहानी के लिए 15-20 मिनट ही काफी है। अतएव हम कहानी ऐसी चाहते हैं कि वह थोड़े से थोड़े शब्दों में कहीं जाए, उसमें एक वाक्य एक शब्द भी अनावश्यक न आने पाए, उसका पहला ही वाक्य मन को आकर्षित कर ले और अंत तक उसे मुग्ध किए रहे और उसमें कुछ चटपटापन हो, कुछ ताजगी हो और इसके साथ ही कुछ तत्व भी हो। तत्वहीन कहानी से मनोरंजन भले हो जाए, मानसिक तृप्ति नहीं होती। यह सच है कि हम कहानियों में उपदेश नहीं चाहते, लेकिन विचारों को उत्तेजित करने के लिए, मन के सुंदर भावों को जागृत करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। वही कहानी सफल होती है जिसमें इन दोनों में से मनोरंजन और मानसिक तृप्ति में से एक अवश्य उपलब्ध हो। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिनका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। साधु पिता का अपने कुव्यसनी पुत्र की दशा से दुखी होना मनोवैज्ञानिक सत्य है। इस आवेग में पिता के मनो वेगों को चित्रित करना और तदनुकूल उनके व्यवहारों को प्रदर्शित करना कहानी को आकर्षक बना सकता है। बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। उस देवता को खोलकर दिखा देना सफल आख्यायिका लेखक का काम है। विपत्ति पर विपत्ति पड़ने से मनुष्य कितना दिलेर हो जाता है, यहाँ तक कि वह बड़े से बड़े संकट का सामना करने के लिए ताल ठोक तैयार हो जाता है। उसकी दुर्वासना भाग जाती है कि हृदय के किसी गुप्त स्थान में छिपे हुए जौहर निकल आते हैं और हमें चकित कर देते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। एक ही घटना या दुर्घटना भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों को भिन्न भिन्न रूप से प्रभावित करती है। हम कहानी में इसको सफलता के साथ दिखा सकते हैं तो कहानी अवश्य आकर्षक होगी। किसी समस्या का समावेश कहानी को आकर्षक बनाने का सबसे उत्तम साधन है। जीवन में ऐसी समस्याएं नित्य ही उपस्थित होती रहती है और उनसे पैदा होने वाला द्वंद्व आख्यायिका को चमका देता है। सत्यवादी पिता को मालूम होता है कि उसके पुत्र ने हत्या की है, वह उसे न्याय की वेदी पर बलिदान कर दे या अपने जीवन सिद्धांतों की हत्या कर डाले। कितना भीषण द्वंद्व है। पश्चाताप ऐसे द्वंद्वों का अखंड स्रोत है। एक भाई ने अपने दूसरे भाई की संपत्ति छल कपट से अपहरण कर ली है। उसे भिक्षा मांगते देख कर क्या छली भाई को जरा भी पश्चाताप न होगा? अगर ऐसा न हो तो वह मनुष्य नहीं है। उपन्यासों की भांति कहानियाँ भी कुछ घटना प्रधान होती हैं, कुछ चरित्र प्रधान। चरित्र प्रधान कहानी का पद ऊंचा समझा जाता है, मगर कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। पृष्ठ संख्या 115। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र का एक अंग दिखाना है। यह परमावश्यक है कि हमारी कहानी से जो परिणाम या तत्व निकले सर्वमान्य हो और उसमें कुछ बारीकी हो। यह एक साधारण नियम है कि हमें उसी बात में आनंद आता है जिससे हमारा कुछ संबंध हो। जुआ खेलने वालों को जो उन्माद और उल्लास होता है वह दर्शक को कदापि नहीं हो सकता। जब हमारे चरित्र इतने सजीव और आकर्षक होते हैं कि पाठक अपने को उनके स्थान पर समझ लेता है, तभी उस कहानी में आनंद प्राप्त होता है। अगर लेखक ने अपने पात्रों के प्रति पाठक में यह सहानुभूति नहीं उत्पन्न कर दी तो वह अपने उद्देश्य में असफल है। पाठकों से यह कहने की जरूरत नहीं है कि इन थोड़े ही दिनों में हिंदी कहानी कला ने कितनी प्रौढ़ता प्राप्त कर ली है। पहले हमारे सामने केवल बंगला कहानियों का नमूना था, अब हम संसार के सभी प्रमुख कहानी लेखकों की रचनाएं पढ़ते हैं, उन पर विचार और बहस करते हैं, उनके गुण दोष निकालते हैं और उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अब हिंदी कहानी लेखकों में विषय और दृष्टिकोण और शैली का अलग अलग विकास होने लगा है। कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई, उसकी जमीन अब उतनी लंबी चौड़ी नहीं है, उसमें कई रसों, कई चरित्रों और कई घटनाओं के लिए स्थान नहीं रहा। वह अब केवल एक प्रसंग का, आत्मा की एक झलक का सजीव हृदय स्पर्शी चित्रण है। इस एक तथ्यता ने उसमें प्रभाव, आकस्मिकता और तीव्रता भर दी है। अब उसमें व्याख्या का अंश कम, संवेदना का अंश अधिक रहता है। उसकी शैली भी अब प्रवाहमयी हो गई है। लेखक को जो कुछ कहना है वह कम से कम शब्दों में कह डालना चाहता है। वह अपने चरित्रों के मनोभावों की व्याख्या करने नहीं बैठता, केवल उसकी तरफ इशारा कर देता है। कभी कभी तो संभाषणों में एक दो शब्दों से ही काम निकाल लेता है। ऐसे कितने ही अवसर होते हैं जब पात्र के मुंह से एक शब्द सुनकर हम उसके मनोभाव का पूरा अनुमान कर लेते हैं। पूरे वाक्य की जरूरत ही नहीं रहती। अब हम कहानी का मूल्य उसके घटना विन्यास से नहीं लगाते। हम चाहते हैं पात्रों की मनोगति घटनाओं की सृष्टि करे। घटनाओं का स्वतंत्र कोई महत्व नहीं रहा, उसका महत्व केवल पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही है। उसी तरह जैसे शालग्राम स्वतंत्र रूप से केवल पत्थर का एक गोल टुकड़ा है, लेकिन उपासक की श्रद्धा से प्रतिष्ठित होकर देवता बन जाता है। खुलासा यह कि कहानी का आधार अब घटना नहीं अनुभूति है। आज लेखक केवल कोई रोचक दृश्य देखकर कहानी लिखने नहीं बैठ जाता है। उसका उद्देश्य स्थूल सौंदर्य नहीं है, वह तो कोई ऐसी प्रेरणा चाहता है जिसमें सौंदर्य की झलक हो और जिसके द्वारा वह पाठक की सुंदर भावनाओं को स्पर्श कर सके।